वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि
सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया
अयदायदायि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
यदायदायि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे
ए जन्म कर्म च मे दिव्य मेवाम्यो वेत्ति तत्त्वतः
जन्म कर्म च मे दिव्य मेवाम्यो वेत्ति तत्त्वतः
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन
देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन
वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिता
वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः
बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागत
बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
वसुदेवसुतं देवं कंस સચાણુરમર્દનમ
દેવકી પરમાનંદ કૃષ્ણ વંદે જગદ્ગુરુ
દેવકી પરમાનંદ કૃષ્ણ વંદે જગદ્ગુરુ
હા કૃષ્ણ વંદે
જગદ્ગુરુ
કૃષ્ણ વંદે
જગદ્ગુરુ
શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ
શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ
શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ
શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ
શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ
શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ
શ્રી
રામ જય રામ જય જય રામ
શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ
શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય
રામ શ્રી રામ જય રામ
જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય
રામ પરબ્રહ્મ સદગુરુ પ્રણમ્ય પુનિ સબ સંત નમો હરિ રામ મુર ભવન મે યા પદ સમાન કો અધમ જીવ તુમ તારિયા તુમ હી તારે સંત અબ કિરપા મો પર કરહુ યો હરિદેવ કહંત સદગુરુ સેતિ વિનતિ પરબ્રહ્મ સુ પરણામ અનંત કોટિ સંત રામદાસ નિસદિન કરુ સલામ નમો રામ ગુરુદેવજી જનત્રિકાલ કેવંદ વિઘ્નહરણ મંગલ કરણ રામદાસ આનંદ રામ ભક્તિ ભક્ત ભગવંત ગુરુ ચતુર્નામ વપુવે તિનકે પદ વંદન કિયે નાસત વિઘ્ન અને
કઈ લોક ભ્રમ પાલ લેતે હૈ સાધન ભજન તો કરતે નહીં કહેતે હમ તીર્થ મે જાય હમારા કલ્યાણ હો જાયેગા હમને અમુક કામ કર લિયા કલ્યાણ હો જાયેગા કલ્યાણ કરને કી ખાસ નીવ હૈ સાધન ભજન કરના સાધન ક્યો નહીં હોતા હૈ સાધન કરને મે રુચિ હોગી તબ સાધન હોગા જિસ કામ મે રુચિ હોતી હૈ वो कितना ही कठिन काम हो आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। अपना कल्याण चाहो तो उसके माफिक रुचि बनाओ। सब जगह भगवान है ऐसा निश्चय करके प्रार्थना करो। रुचि नहीं भी है तो भी भगवान से तो प्रार्थना करो, हे भगवान मेरी रुचि जगाओ। जैसे कोई बीमार आदमी वैद्य के पास जाए और कहे कि मेरा शरीर पुष्ट नहीं होता है, तो वो कहे कि तुम पौष्टिक चीज खाओ, दूध ले ओ, फल ले ओ, कोई पौष्टिक चीज ले ओ, कि रुचि नहीं होती, रुचि की दवाई दे ओ। ऐसे भगवान से कहो महाराज यदि रुचि नहीं है तो रुचि पैदा करो, करना तो मेरे कल्याण है इस जीवन में, दूसरा मेरा कोई खास काम नहीं है। दूसरे सब काम हैं ये कल्याण के सहायक हैं तब तो ठीक है, नहीं तो कोई काम के नहीं है। मेरा कल्याण होना चाहिए ऐसा भगवान से बार बार निवेदन करो तो कठिन नहीं है। जो ये सोच के बैठ जाए कि न तो कोई भगवान है न कोई कल्याण होता है, अपने तो जिए तब तक खूब आराम से खाओ पियो और मौज उड़ाओ, आगे की किसने कुछ नहीं देखा है, उस आदमी का कल्याण करने का कोई रास्ता नहीं है, उसके सब रास्ते बंद हैं, क्योंकि उसने खुद नहीं रास्ते बंद कर लिए। न तो परलोक पर विश्वास न भगवान पर विश्वास, ऐसे आदमी का संग ही नहीं करना चाहिए। यदि परलोक और भगवान पर विश्वास हो तो भगवान के सामने रोवे तो काम बन सकता है। क्या ही आनंद की बात है कि हम उनके सामने रोवे और वे ही हमारे आंसू पोंछते रहे। तीव्र इच्छा होनी चाहिए कल्याण की, फिर वह कुछ भी न करके भगवान की शरण होकर प्रार्थना करे तो कार्य सिद्ध हो सकता है। अभी जिस प्रकार अपने लोगों का समय बीत रहा है वह अपनी धारणा के अनुसार ही बिता रहे हैं, अपनी धारणा बना ली जीवन चला रहे हैं, सत्संग की दृष्टि से नहीं देखते। यदि सत्संग की दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारा जीवन ठीक नहीं बीत रहा है। आराम से खा लेते हैं, आराम से पहन लेते हैं, आराम से सो जाते हैं, क्यों कल्याण की इच्छा करें, क्यों नई आफत पैदा करें, और थोड़े बहुत पुराने संस्कार हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है तो थोड़ा कीर्तन कर लिया, भजन कर लिया, थोड़ा सा काम कर लिया, इसी को ही वे अच्छा मान लेते हैं। भगवान पर यदि आप लोगों का विश्वास हो तो आप ये भी साथ में ध्यान में रखो, वे बड़े दयालु हैं, प्रार्थना करने से सुनते हैं, और आपकी लगन के अनुसार भगवान पर पूरा असर पड़ता है। कोई कहे कि हमको भगवान के सामने रुलाई आती नहीं, रोना आता ही नहीं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो हम कर रहे हैं वो हमको पसंद है, उससे दुख नहीं है। यदि हमारी क्रिया में हमारे दुख पैदा होता तो रुलाई न आए ऐसा संभव ही नहीं है। या फिर भगवान के विश्वास में कमी है। कोई यह कहे हम रोते भी हैं फिर भी भगवान दया ही नहीं करते, तो और रो। भगवान दया नहीं करते ये भावना मत बनाओ। अभी रोने में कमी है। बच्चा रोता रहे माँ नहीं आई तो बच्चा रोना बंद करता है क्या? वो और ज्यादा रोता है। और बच्चा यदि खूब जोर से रोने लग जाए और माँ यदि रुपयों की गड्डी गिनती है तो वो रुपयों की गड्डी को छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आकर पहले बच्चे को संभालेगी। जब माँ को आना पड़ता है तो भगवान तो दया के रूप है, वो कैसे पीछे रहेंगे? पर आपके विश्वास नहीं है। विश्वास जमाओ, जरूर आएंगे, जरूर कल्याण करेंगे। कहते हैं हम तो बहुत दिनों से भगवान से प्रार्थना करते हैं, कोई सुधार नहीं हो रहा है, ये धोखा है, अपने सुधार का निश्चय नहीं किया है। जिस आदमी की जिस काम में रुचि हो और वो पूरा ना हो तो उस पर क्या बीतती है वो वही जानता है। दुकान पर बैठा है, बिल्कुल बिक्री नहीं हुई और बाजार के भाव बिल्कुल खराब हो रहे हो, उस समय हृदय में कैसी उथल पुथल होती है? क्या ऐसी कल्याण के लिए होती है? एक आदमी निगाह कर लिया, इतना आंख पड़ा है, दो महीने में खत्म हो जाएगा। वह दूसरे को कह दे चार महीने के पूर्व तो हो ही जाएगा। समझे नहीं भाई ये बात? आलस्य में काम शुरू नहीं होता, बात ही बात करते हैं। आप तो आलस्य का भी सुख भोगते हो। कल्याण के लिए थोड़ी कठिनता भी उठानी पड़े, ऐसे साहस किस में होता है? कल्याण में भी विश्वास नहीं है कल्याण होता है कि नहीं होता है, रुचि तो कैसे होगी? श्रद्धा का विश्वास का फल अच्छा ही हुआ करता है। जितनी श्रद्धा होती है उतनी तत्परता होती है। वेद्य आता है, वह बतावे इस प्रकार करो, इस पानी को ऐसे करो, इतनी बार गर्म करो और फिर मैं ये दवाई दे लाओ, तो सब एक एक क्रिया जैसा वेद्य बोलता है, एक बार बताता है उसमें वो सब समझ लेता है। क्योंकि शरीर में मोह होने के कारण शरीर के स्वस्थ रहने के लिए जो जो वेद बात बोलता है हम रुचिपूर्वक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। और मन में डर भी रहता है कि वैद्य जी से दोबारा बात पूछे कहीं चिढ़ न जाए, इसलिए एक बार में ध्यान से सुन लो। ऐसे भगवान के ऊपर विश्वास रखो। रोगी यदि वैद्य से बोलता है कि हमारा आप पर विश्वास है, रोगी यदि बोलता है वैद्य से, तो वो वैद्य दूसरे दिन फिर आएगा, फिर पूछेगा कल दवाई दी उसका क्या हुआ कि आज कम लाभ है, कोई विशेष लाभ नहीं, और अच्छी बात है। वैद्य क्या नहीं दवाई लेते रखो। दवाई पर वैद्य पर जितनी श्रद्धा होगी उसी के अनुसार चेष्टा होगी, और जितनी चेष्टा करोगे उतना ही लाभ होगा। ऐसे ही भगवान के ऊपर सत्संग की बातों पर श्रद्धा करो, इसी प्रकार से लाभ होगा। भगवान से प्रार्थना करने पर भी जब काम सिद्ध नहीं होता है समझना चाहिए अभी कोई युक्ति मिली नहीं है। कहते हैं कि करना तो चाहते हैं पर क्या बताएं, कुछ होता नहीं है। ये केवल बात कहने के लिए कह रहे हो, करना चाहते हो और होता नहीं ऐसा हमने सुना नहीं है। चाहना और न हो और फिर उसके लिए व्याकुलता भी ना हो, संभव नहीं है। कोई कहे कलकत्ता जाना चाहते हैं, कलकत्ता जाना चाहते हैं पर क्या करें, हमसे तो जाना नहीं बनता। तो भाई ऐसे कैसे होगा, जाना चाहते हो और जाना बनता नहीं, ऐसा कैसे होगा। जो चाहेगा उसके द्वारा चेष्टा तो होगी, यदि उसका प्रयत्न ही नहीं है तो उसकी चाहना कोई दामी नहीं है। ऐसे कोई कहे कि आत्मा का उद्धार कैसे हो, हम करना तो चाहते हैं पर होता नहीं है, जिज्ञासा भी है पर वो आत्मा का उद्धार नहीं होता, ये सब बातें फालतू की है। चाहते ही नहीं है, अपनी कमी की तरफ विचार करो। आत्मा के उद्धार चाहने वाले की कभी हार नहीं होती। भगवान की दया का पात्र वो है जो उसकी शरण होकर उनसे प्रार्थना करता है, उसको दया मिलती है। खास बात, भगवान की दया किसको मिलती है, एकदम शरण होकर के दया चाहता है वो दया का पात्र है। कुछ भी नहीं हो तो एकांत में बैठकर भगवान के सामने रोवे। द्रौपदी ने जब कहीं आश्रय नहीं देखा, कई बार पतियों की तरफ देखा, पतियों ने सिर नीचा कर लिया, पिता में भीष्म की तरफ देखा मुंह फेर लिया, द्रोणाचार्य की तरफ देखा तो वो भी इधर उधर देखने लग गए, कोई द्रौपदी से आंख मिलाकर देखने को तैयार नहीं। द्रौपदी ने जब कोई आश्रय नहीं देखा तो उसने भगवान के सामने रोना चालू किया। भगवान ने उसका रोना सुना, द्रौपदी के आंसू भगवान ने देखे, वहां रहने वाले दूसरों ने नहीं देखे। तो भगवान को कितनी देर लगी, भगवान वस्त्र के रूप में अवतरित हो गए, वस्त्र ही तो खींचा जा रहा था, तो भगवान वस्त्र के रूप में आ गए, चतुर्भुज रूप से नहीं आए, द्विभुज रूप से नहीं आए, सुदर्शन चक्र लेकर मारने के लिए नहीं आए। ऐसा आना वहां भगवान के लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि उस रूप में फिर अनधिकारियों को भी दर्शन होते। यदि सुदर्शन चक्र लेकर दुशासन को मारने आते तो दुशासन का कल्याण हो जाता, कल्याण का पात्र नहीं था। तो वो कितने रहस्य की बात है, वो पात्र नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, वस्त्रावतार ही धारण किया, वस्त्र में ही अपना अवतार कर लिया, बस खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ। एक तरफ मनुष्य पाप कर रहे हैं, उनको लोग सुखी होते हुए देखते हैं, और जो अहिंसा आदि धर्मों का पालन करते हैं उनको दुखी देखते हैं, तो लोगों के मन में धारणा बन जाती है कि देखो सदाचार और धर्म करने वाला तो दुखी है और ये पाप करने वाला कितना सुखी है। फिर सदाचार आदि को अपनाने में संदेह करते हैं, इससे नास्तिकता फैलती है, इसका भी रहस्य समझना चाहिए। किसी को अभी सुख मिलता है या दुख मिलता है वो पुराने कर्मों के फल से मिलता है, अभी के किए हुए कर्मों से उसको सुख और दुख के भोगने में नहीं देखना चाहिए। महात्माओं पर शास्त्रों पर पूरा विश्वास है नहीं, विश्वास हो तो समझ में आवे नहीं, युक्तियों से विश्वास होता नहीं, मनुष्य पतन की तरफ जाता है। स्वभाव सिद्ध तो इसका पतन है ही, प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, बिना प्रयत्न के पतन की तरफ जाते हैं। सत्कार्य के त्याग में कोई परिश्रम नहीं है, खराब करने में आनंद मिलता है। यहां जल डाल दो, नीचे से नीचे आप ही चला जाएगा, ऊपर उठना हो तो उसके लिए मशीन लगानी पड़ती है। जल है वो नीचे रहता है, ऊपर ले जाना तो मशीन लगाओ, और नीचे ढड़ास में अपना आप ही चला जाता है। ऐसे ही मनुष्य पतन की तरफ तो अब बहुत सुगमता से चला जाता है, और ऊंचाई पर चढ़ने में कठिनता होती है। यदि थोड़ी कठिनता सहन करो और ऊंचे हो जाओ तो वो कठिनता वरदान है। मनुष्य प्रपंच में पड़ा रहे तो प्रकृति नीचे की तरफ ले जाएगी, और नीचान में पानी का बहाव स्वाभाविक है ही, इसलिए ज्यादा प्रपंच में मत फंसो। प्रश्न करते हैं कि भगवान कृपा करके मानव से जीवन दे दिए और अच्छे कुल में संग में भी अच्छा रख दिया, ये सब उनकी कृपा है, परंतु अब अटकाव कहाँ है, क्यों नहीं उद्धार हो रहा है? सेठ जी, अटकाने वाला आपका मन है। आप खुद स्वीकार करते हो कि भगवान ने कृपा करके जन्म दे दिया, अच्छे कुल में दे दिया, सत्संग में बैठा दिया, इसका मतलब है कि उनकी तरफ से जो कृपा करनी थी वो कर दी। अब तुम गहराई से अपने मन की बदमाशी को समझो। यह विश्वास रखो कि आपके मन से बदमाशी पैदा हो रही है तो दूर हटने के लिए कोई विशेष बात कठिनाई नहीं होगी। प्रश्न, ये मन बदमाशी क्यों करता है? उत्तर, बात यह है कि मन प्रत्यक्षवादी है। देखो, प्रत्यक्षवादी माने तत्काल सुख मिले, अभी सुख मिले, आगे के आगे देखी जाएगी, मन का स्वभाव है। मन प्रत्यक्षवादी है, वह किसी का विश्वास नहीं करता, इसलिए मन इधर उधर सुख ढूंढता रहता है, तत्काल सुख में फंस जाता है, तरह तरह की कामना होती है, कामनाओं में उलझ जाता है। प्रश्न, भगवान तो कहते हैं कामना नहीं करनी चाहिए, फिर कैसे मिटे कैसे? उत्तर, मिटना चाहोगे, मिटने की चिंता होगी, ये कैसे मिटे कैसे मिटे, मिटने के लिए प्रयत्न करोगे तभी मिटेगी। पहले ही पहले थे लड़की रे ब्याहरी चिंता करो कि नहीं, ईरो ब्याह किया होसी, फिर थे भी मैं लागू हो जाना यही सरसी, लड़की का विवाह चाहे नहीं तो उसके लिए प्रयत्न करोगी भी नहीं तो कैसे विवाह होगा? लड़की का विवाह तो चाहने पर भी हो सकता है, न चाहने पर भी हो सकता है, परंतु कामना को मिटाने की चाहना हो जाएगी तब तो ये मिट ही जाएगी। दृढ़ता कर ले आदमी, लक्ष्य बना ले, उसके ऊपर तुल जाए, शास्त्र में एक बात आती है बहुत बढ़िया बात है, एक चिड़िया ने देखा कि मेरे अंडों को समुद्र की लहरों में, समुद्र की लहरों ने अपने अंदर बहा लिया, तो चिड़िया क्रोध में आ गई, बहुत नाराज हुई और वो समुद्र को खाली करने का विचार किया कि मैं इसके पानी को खाली करूंगी और मेरे अंडों को लूंगी। सब पक्षियों ने कहा कि अरे चिड़िया क्या करने जा रही हो कि मैं इस समुद्र को खाली करूंगी, क्योंकि इसके लहरों ने मेरे अंडों को अपने अंदर छिपा लिया, मैं अंडे प्राप्त कर मेरे बच्चों को प्राप्त करूंगी। तो भाई इसने तो हमारे सबके अंडे लहरों के अंदर डुबा रखे हैं, समुद्र को कब तक खाली करोगी? कि नहीं मैं तो करूंगी। और वो चूस से भर भर करके पानी इधर उधर फेंकने लगी, कोई उसकी मदद करने भी नहीं आया और उसने समुद्र को सुखा दिया। ये बात है तो असंभव, समुद्र को सुखाना असंभव है, पर ये शास्त्र संकेत करता है कि चिड़िया का चोंच चिड़िया के निश्चय करने पर समुद्र को सुखा सकता है। तो एक आदमी यदि निश्चय कर ले तो परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? एक आदमी के पिता का खर्च है, वह बड़ा दरिद्र है बेटा, जहां गया वहां रोया, लेकिन किसी ने उसको कुछ नहीं दिया। उसने कहा मेरे बाप का खर्च है, क्या करूं, मेरा बाप मर गया, कुछ है नहीं, कुछ आप मेरी मदद करो। किसी ने मदद की नहीं, जवाब कोरा जवाब दे दिया, भाई हमारे से नहीं होगा। एक धनी आदमी मिल गया, उसने इतना ही कहा कि चिंता मत करो, जितना सामान तुम्हारे बाप के खर्च में लगे ले जाओ। उसने ये नहीं कहा कि पैसा सब मैं दे दूंगा, उसने इतना ही कहा कि तुम चिंता मत करो, जितना सामान खर्च में लगे हमारी दुकान से ले जाओ। इतना सुनते ही उसकी चिंता मिट गई। उसने ये सोचा ही नहीं कि कल ने सेठ कहेगा कि भाई हमने सामान ले जाने के लिए कहा था, ये थोड़ा ही कहा था कि हम पैसा नहीं लेंगे, इतना पैसा देना पड़ेगा, ये उसके मन में ही नहीं आती। और उसको कोई आदमी मिलता है कि अरे भाई कल तो तू मारा मारा फिर रहा था, तू बड़ा चिंता कर रहा था, आज क्या बात हो गई, तू बड़ा खुशी खुशी से सामान ला रहा है, बात क्या है? तो वो आदमी बोलता है कि फलाने फलाने सेठ ने बड़ी कृपा कर दी, तो पूछा क्या उसने रुपया दिया? नहीं रुपया नहीं दिया, तो उसने मुझे विश्वास दिया। तो एक आदमी के कहने पर विश्वास कर लिया और वो सामान लेकर पिता का खर्च कर दिया, बड़े खुशी खुशी कर दिया। भगवान घोषणा करते हैं अरे आ जाओ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, और हम लोग विश्वास ही नहीं करते। आदमी की बात पर विश्वास कर लेते हैं, भगवान की बात पर विश्वास नहीं करते। अपने तो चीज अपने लानी है, इंतजाम करना है, रुपया तो अपना आप जाने, वो सेठ जाने, सेठ का काम जाने, ऐसे ही हमारे पाप ताप जाने, भगवान जाने, भगवान का काम जाने। जैसे खर्च का दिन केवल 12वां दिन होता है, ऐसे अपने कल्याण का ये आखिरी समय है। इस समय कर लो तो कर लो, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 12 दिन के बाद यदि उसके पास लाखों रुपया हो जाए और 12 दिन अच्छा नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। 12 दिन के बाद यदि उसकी लॉटरी खुलती है और घर में कोई सोना चांदी का बहुत बड़ा खजाना मिल भी जाए, लेकिन बाप का अवसर तो नहीं हो सका ना। ऐसे ही मानव शरीर में कल्याण नहीं हुआ, फिर चाहे आप देवताओं के वहां जाकर कितना ही सुख भोग लो, कितने ही आराम में रह लो, कल्याण तो नहीं हुआ ना। इसलिए भगवान पर विश्वास रखो, कोई चिंता की बात नहीं। भगवान ने खुद ने कहा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, हमें तो एकदम बेफिक्री में रहना चाहिए। प्रश्न, बीच में विघ्न आ जाते हैं इसलिए हम घबरा जाते हैं, उस घबराहट कैसे मिटे? अरे घबराहट मिटाने के लिए तो विश्वास दिलाया जाता है। उस धनी आदमी ने तो विश्वास ही दिलाया था। यदि उसकी बात पर विश्वास नहीं करता तो वो दरिद्री तो घबराता ही। विश्वास रखने का अर्थ है कि सारा भार अगले पर है, अगला आदमी भार लेने के लिए तैयार है। विघ्न बाधा आ जावे तो उसके सामने आवाज लगाओ, हे भगवान देखो ये बाधा आ गई, हम तो आपके शरण में आए, बाधा आई। यदि आ जाए तो खबर ले ली जाएगी, उसका अपने ऊपर हाथ समझेगी, और कितनी आओ बाधा, भगवान अपने आप खबर ले लेंगे। काम क्रोध आदि तंग करे परंतु उसके अनुसार काम नहीं करें, थोड़ी हिम्मत रखें, तब ईश्वर अपने आश्वासन पर कायम रहता है। इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। भगवान की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, कोई कैसा ही हो भगवान उसको छोड़ते नहीं है। यही आप मान लेते हैं कि भगवान तो हमको छोड़ते हैं, वो छोड़ते नहीं है। भगवान देखते हैं कि ध्यान से बहुत बढ़िया बात, भगवान देखते हैं कि मेरे शरण होने पर ये कितना बेफिक्र है, कितना विश्वास कर रखा है। भगवान का आश्रय लेने पर यदि विघ्न बाधा आ जाए तो समझना चाहिए ये हमारी आज परीक्षा हो रही है। यदि कोई अपने उद्धार के लिए चिंता करता है तो वह शरण नहीं है, भगवान के शरण कहाँ हुआ? यदि विश्वास इस पर हो जाए, ईश्वर पर विश्वास हो जाए, तो सबसे पहला काम चिंता मिटने का होता है। जैसे सूर्य उदय हो जाए तो सबसे पहला काम अंधकार मिटने का होता है। बहुत आदमी कहते हैं हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन मानते नहीं, ऊपर से बोलते बोलते हैं, अंदर से उनका हृदय चिंतित रहता है। तो कैसे समझा जाए कि उन्होंने भगवान पर विश्वास कर लिया और उनका उद्धार हो जाएगा? अपने तो सबसे बड़े धनी भगवान है, उनको संभला दो। भगवान जाने, भगवान का काम जाने। विभीषण को ये पता थोड़े ही था कि भगवान मुझे मंत्रियों में मानेंगे, मेरे से सलाह लेंगे। विभीषण को इतना विश्वास था कि चाहे मैं रावण का भाई हूं और चाहे राम जी रावण से युद्ध करने के लिए आते हो तो मैं उनकी शरण में चला जाऊंगा, मेरा त्याग नहीं कर सकते। ये उसको विश्वास था, तभी आया। परंतु ये नहीं सोचा था कि राम जी मुझे प्रधान प्रधान विश्वस्त मंत्रियों के अंदर रखेंगे, ये उसने नहीं सोचा था। लेकिन भगवान ने उसको मंत्री बनाया, और ये भी नहीं सोचा था कि मुझे भगवान लंकेश कह देंगे, लंका का राजा ही बना देंगे, मेरे टीका लगा देंगे, ऐसा भी नहीं सोचा था, ऐसी भावना ही नहीं थी। भगवान ने उसको लंकेश बनाया। आप जितना सोचते नहीं है उससे ज्यादा भगवान आपका काम करते हैं कल्याण के विषय में। कोई आदमी बहुत प्रसन्न दिखता है तो लोग अनुमान लगाते हैं कि ये आदमी आज इतना प्रसन्न है, इसका मतलब इसको कोई न कोई बड़ी चीज मिल गई। ऐसे ही संत महात्मा बड़े बेफिक्र रहते हैं तो इसका मतलब है उनको कोई न कोई बड़ा भारी मिलने वाला पदार्थ मिल गया, ये लक्षण है। जैसे कोई आदमी, दरिद्री आदमी किसी सेठ का आसरा पकड़कर पहले प्रसन्न होता है, फिर उसका आसरा छोड़कर गड़बड़ करने लगता है तो सेठ उसका त्याग कर देता है, उसके जूते भी पड़ते हैं। परंतु ईश्वर की शरण में चला जाए और उसके द्वारा कोई गड़बड़ी हो तो वो हो ही नहीं सकती, गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, इसका मतलब वो ईश्वर की शरण में हुआ ही नहीं है। जिसके मन में गड़बड़ी होती है वो अपने नौकर से भी डरता है। चोर डाकू हाकम से तो सभी डरते हैं, परंतु अपना जो घर का नौकर होता है उससे भी डर लगता है यदि खुद के अंदर गड़बड़ी होती है तो। किंतु वही आदमी हाकिम के यहां से नौकरी छोड़कर चला जाता है तो उससे नहीं डरते, भगवान की शरण होने। इसी प्रकार भगवान की शरण होने पर होता है, भगवान की शरण छोड़ दोगे तो काम क्रोध लोभ आदि जूता मारेंगे, क्योंकि भगवान ने उसको छोड़ दिया। जो भगवान का आश्रय ले रखा है भगवान उसको नहीं छोड़ते, वह भले ही कितना ही उसको छोड़ दे, भगवान को भगवान नहीं छोड़ते। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति। जब जब अपने उनको भगवान को छोड़ देते तभी दुर्दशा होती है, नहीं तो काम क्रोध लोभ आदि नजदीक आ ही नहीं सकते हैं। देश की बात है, सिपाही की जगह पहले चेला होते थे, माल गुजारी अदाई करते थे, चूरू की बात है, मोचियों ने फिर जूते मारे। भगवान का आश्रय छोड़ दे उसके जूते पड़ेंगे, जिसके जूते पड़ते हैं उसने भगवान का आश्रय छोड़ दिया, नहीं तो मोची रूपी काम क्रोध डरने वाले रहते हैं। भगवान की शरण छोड़ देने से इनमें बल मिलता है। एक भाई भला आदमी था, उसको कई हजार रुपए गवर्नमेंट को कर देना था, टैक्स देना था गवर्नमेंट को। उसने कह दिया मैं रुपया आपके पास जमा कर दूंगा। उसने कह दिया मैं रुपया आपके पास जमा देना चाहता हूं, पर करूं क्या, रास्ते में चोरों का भय है, मैं कैसे आपको पैसा जमा कराऊं। तो गवर्नमेंट ने पुलिस भेज दी, वह रुपया बांध कर चला। अब उसके पिछाड़ी चोर हो गए। उसने पुलिस वालों से कहा तुम लोग सो जाते हो और चोर हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, यदि मौका पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा जगह जगह थाना है, तुम बिगुल बजा दोगे तो पुलिस के बहुत आदमी इकट्ठे हो सकते हैं, बिगुल बजाओ फिर कुछ परवाह नहीं है। रात को चोर आए, पुलिस वाले तो सो गए, और पुलिस वाले एक दो थे और चोर कोई सात आठ थे। चोर आए, डराए, धमकाए, उसने जोर से बिगुल बजाई। बिगुल बजाई तो कई से सिपाही आ गए। सिपाही का कोई डर नहीं है, बिगुल बजा दियो। ये बिगुल के बजाने पर सब भाग गया। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार है, डाकू है, और भगवान रो नाम कीर्तन करनो, बिगुल बजानो है। जब है निकट आवे तो कीर्तन करन लाग जाओ। काम, क्रोध, लोभ आदि झट भाग जासी। इमें संदेह के है, डाकू तो बिगुल बजाते ही ठहरे नहीं है। इसी प्रकार हे नाथ पुकारो, फिर तो आप स्वयं ही भाग जासी। इस प्रकार भगवान की शरण रहो, भगवान आप ही धावो बोल सी, उसी को आश्रो सच्चो है। जिसके जीवन में ईश्वर पर विश्वास नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान पर विश्वास नहीं, जीवन व्यर्थ है। एक बात सुनी जावे, तुलसीदास जी भगवान की भक्ति करता। तुलसीदास जी के ने थोड़ा कुछ रुपया हा। तुलसीदास जी तो सूता भगवान आर्मी और पैरो लगाता। चोर डाको, चोर वगैरह डाको डालने वास्ते आया, बट भगवान धनुष बाण लिए पैरो लगाता। एक दिन आया, दो दिन आया, चार दिन आया, रोज आवे और भगवान पैरा लगाता, बट दिखे मैंने मौको नहीं लागियो। एक दिन चोरों ने विचार किया कि अपने को रात में नहीं आना चाहिए, दिन में आना चाहिए। रात में ये जाने कौन आ जाते हैं धनुष बाण लेकर। दिन में आए, दिन में आए तो तुलसीदास जी के दर्शन किए, चरणों में गिर गए। कहने लगे, बाबा हम लोग चोर डाकू बदमाश हैं, आपके यहां रोज चोरी करने आते थे। हम सच्ची बात बताते हैं, एक दिन, दो दिन, रोज दिन आए, परंतु रात्रि में आपके यहां पैरा कौन देता है हमको पता नहीं है। उनके दर्शन कराओ, उनकी सांवली सूरत, छोटे छोटे धनुष धनिया, छोटे छोटे बाण। हमारा मन तो ऐसा होता था कि उनको उठा के ले जाए, बच्चों को उनको उठा के ले जाए। परंतु थोड़ा आगे बढ़ते तो हमारे मन में दया भी आती कि न जाने किस माँ के बेटा है, न जाने किसके किस पिता के पुत्र है, उनको कितना कष्ट होगा। इनकी भोली भाली सूरत देखकर हम भग भी जाते थे। हम रोज आए, उनसे बात करने की इच्छा होती थी, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हुई। हमने सच्ची सच्ची सब बात आपको बता दी, अब आप उन बच्चों के दर्शन करो। तुलसीदास जी रोने लग गए। उन्होंने ख्याल किया, अरे रात को भगवान पैरा देते हैं, हमारे कारण से भगवान को कष्ट हुआ। तुलसीदास जी अपने आंसू पूंछ करके कहने लगे, भाई आप लोग यहां क्यों आते थे रात को, कि महाराज सच्ची बात है, आपका धन लूटने के लिए आते थे। अच्छा, केवल इन रुपयों के लिए तुम आते थे? ये ले जाओ रुपया। उन्होंने कहा अब रुपया लेने की इच्छा नहीं है, तो अब तो हमारे केवल उनसे मिलने की इच्छा है। तुलसीदास जी ने कहा उनसे मिलना तो मेरे लिए भी बड़ा दुर्लभ है, तुम ये धन ले जाओ, उनको बड़ा कष्ट हुआ। इसी प्रकार भगवान ने कहा अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो उसको आवश्यकता होती है वे उसकी साल संभाल करते हैं, योगक्षेम की चिंता भगवान करते हैं। यदि शरणागत अपने योगक्षेम की चिंता करेगा तो फिर क्यों शरण हुआ? सेठ जी ने कहा भगवान के भरोसे की एक बड़ी प्रत्यक्ष बात सुनाता हूं। एक बार चित्रकूट में गया था, वहां एक पुरुष से मिले, उनसे बातचीत हुई। मैंने पूछा क्या करते हो? कि खेती करते हैं, खेती से हमारा गुजारा चलता है और साथ में भजन भी करते हैं और हमारे काम भी हो जाते हैं। उनका नाम था रामनारायण जी, चित्रकूट में। फिर मैंने पूछा वर्षा नहीं हो तो कैसे काम चलता होगा भाई? तो उसने जवाब दिया क्यों नहीं होगी वर्षा, वर्षा कैसे नहीं होगी, हमारे तो वर्षा के ऊपर ही आधार है। हमारे यहां कोई कुआं नहीं, कोई बावड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, खेतों में कोई कुछ नहीं, यहां संचय जल का होता ही नहीं है, यहां भगवान को बरसाना ही पड़ेगा। जब हम सब भगवान के भरोसे रह रहे हैं तो भगवान के यहां बरसाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम खाएंगे क्या? तब हमारे पर असर पड़ा कि इसको विश्वास बोलते हैं। बरसात नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या, और हमको खिलाने के लिए भगवान को बरसाना ही पड़ेगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। यदि ऐसा कर लेते तो आज हमारा कल्याण हो जाता। एक दुखी आदमी धनी आदमी के पास आया, अपने लड़की के विवाह के खर्च के लिए रोया। उसने कहा भगवान आप ही सबका इंतजाम करते हैं, इसके लिए क्यों रोता है, भगवान आप ही फिक्र करेंगे। धनी आदमी ने कहा जब विवाह की तैयारी हुई, सब आवश्यक चीजें लाता है, लोगों ने पूछा रुपया देंगे? उसने कहा सेठ जी दे देंगे। वे लोग सेठ जी के पास गए कि आपने रुपया देना किया है क्या? सेठ जी ने कहा नहीं। उन लोगों ने कहा उसने तो यही बात कही है, इसलिए हम तो आपके भरोसे पर ही उसको उधार सामान देते रहे। उसको बुलाया, सब बात उसने कही कि जी आपने कहा था ना कि भगवान सब करेंगे, इसलिए हमने तो यही समझा कि शायद आप ही सब व्यवस्था करेंगे। सेठ ने कहा भैया मैंने तो भगवान के भरोसे की बात कही, तुमने हमारे पर भरोसा कैसे कर लिया? तो आपने भगवान का नाम बीच में क्यों लिया? मैंने देखा आप भगवान के पीछे आप ही करोगे। सेठ ने कहा जब इतनी बात है तो जाओ अब हम ही करेंगे। इतना आश्वासन मिलने पर ब्राह्मण ने बेटी का विवाह शुरू कर दिया। इसी प्रकार भगवान के भरोसे पर काम आरंभ कर दो तो भगवान बाकी नहीं रखेंगे। हमको तो उनके भरोसे पर निश्चिंत रहना चाहिए। अजया अजया गज मस्तक चढ़े। एक बकरी थी, जल पी रही थी, उस समय जंगल के कई पशु आए मारने के लिए, खाने के लिए। कहा कि जानते हो नहीं, ये जिसका पैर है ना, मैंने उसका आश्रय ले रखा है, और ये तो सिंह का पैर है। सब भाग गए। इतने में वो सिंह खुद आया, उसने कहा कि मैं तुमको खाऊंगा कि खा जाओ, लेकिन मैंने तो आपके पैर का आश्रय ले रखा है, सबको भगाया है, अब आप खाओ तो खा जाओ। सिंह ने कहा अरे मेरे पैरों का भरोसा किया, अब मैं इसको खाऊंगा, तो तुम इस वन को छोड़कर चले जाओ, कहां जाऊं, सब जगह आपके हिंसक जानवर मुझे खा जाएंगे। सिंह ने एक हाथी को बुलाया, हाथी को आए इस बकरी को अपनी सूंड से अपने ऊपर बैठाओ और दूसरे जंगल में छोड़ के आओ, यदि इसको कोई खाएगा तो तेरी जिम्मेदारी है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और पहुंचा करके मेरे पास आकर के कहना कि मैंने छोड़ दिया है। बकरी के साथ हाथी ने वैसा ही बर्ताव किया और बकरी निश्चिंत हो गई। एक पशु का पैर का आश्रय लेने पर ये फल मिलता है, फिर भगवान की शरण होकर विश्वास करो तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। भगवान की शरण होकर बेफिक्र रहो, वे अपने आप अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। भगवान को बोझा ढोने में आनंद आता है, आप भगवान पर भरोसा करो तो भगवान को आनंद आता है। कोई सेठ के भरोसे सामान ले आए तो सेठ के मन में प्रसन्नता हो न हो वो सेठ जाने, उसके मन में खिन्नता भी आ सकती है, एक आफत है, लेकिन भगवान पर भरोसा करके उसके ऊपर छोड़ दो तो भगवान को खूब आनंद आता है। अर्जुन ने भगवान पर अपने को छोड़ दिया तो भगवान ने द्रोण भीष्म आदि कर्ण को सबको मरा हुआ दिखाया, ये देखो सब मरे हुए हैं। काम तो सब होगा ही, निमित्त बन जाएंगे। एक बहुत नामी बात है, पद पद पर मालूम हो जाएगी भगवान पर कितना भरोसा है, टिका रहे, विचलित नहीं होवे तो भगवान उसको संभाल लेते हैं। और मन का धोखा हो और पोल निकल जाए तो भगवान सरक भी जाते हैं, भारी से भारी भी भगवान परीक्षा ले तो भी विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा आदमी कभी भी कल्याण से खाली नहीं रहता। कोई भी अपने पर आफत आने वाली हो वो सह लो, प्रेम से सह लो। न्याय युक्त टालने के लिए चेष्टा करो, न्याय युक्त। जैसे बीमारी आ गई दवाई लेना न्याय है, तो न्याय युक्त तो चेष्टा करो परंतु सह लो। वो शूरवीर होता है, सुंदर सोई सूरमा, भगवान की शरण होने पर बेफिक्री, उत्साह मिलता है, शांति होती है, प्रसन्नता का पार नहीं रहता है। कोई किसी का भार संभाल लेता है तो बेफिक्र हो जाता है, आज्ञा पालन करता है तो बेफिक्र हो जाता है। भगवान पर विश्वास करो, भगवान बाध्य होकर के आपकी बात मानेंगे। भगवान हमारे मांगने की इच्छा नष्ट हो जाए यही बात भगवान से मांगो। दुर्योधन कर्ण को राजा बनाता है, वह खुश होता है, इसका क्या अर्थ है, इसका इससे मालूम होता है कि वो राज्य चाहता था कर्ण। ऐसे ही जो इच्छा करते हैं इसका अर्थ है कि वे भगवान का भरोसा नहीं रखते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीम
मन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण
श्यावर रामचंद्र की मोर मुकुटवंशी वाले की
जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्मा की
जय